मैं मंजू देवी परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालय इंदौर से आज हम वसंत भाग 3 के पाठ 14 का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है अकोरी लोटा। इसके लेखक हैं अन्नपूर्णा नंद जी। इस पाठ को हमने दो भागों में विभाजित किया है तो अब हम प्रथम भाग का अध्ययन करेंगे। अन्नपूर्णानंद की कहानी अकबरी लोटा एक हास्यपूर्ण कहानी है। लेखक ने कहानी को बहुत ही रोचक ढंग से प्रस्तुत किया है और बताया है कि परेशानी में परेशान न होकर समझदारी से एक समस्या का हल निकाला जा सकता है। और दूसरी बात, इस कहानी में यह भी बताई गई है कि एक सच्चा मित्र ही मित्र के काम आता है, वह उसके लिए बहुत कुछ कर गुजर जाता है। कहानी के माध्यम से लेखक हमें सीख देना चाहते हैं कि सही वक्त पर सही समझ का उपयोग करना कितना जरूरी है। इस कहानी के प्रमुख पात्र हैं लाला झाऊलाल, उनके मित्र पंडित विलवासी जी। तो प्रथम भाग देखिए। एक थे लाला जिनका नाम था झाऊलाल और दूसरे उनके मित्र थे विलवासी जी। लाला झाऊलाल को खाने पीने की कोई कमी न थी, अच्छे खाते पीते परिवार से थे और व्यवसाय भी अच्छा खासा चल रहा था। काशी के ठटेरी बाजार में मकान था। मकान के नीचे बनी दुकानों से महीने के करीब 100 रुपये किराया आ जाता था तो गुजारा अच्छे से हो जाता था, परंतु फिर भी एक साथ 250 रुपये होना बहुत बड़ी बात थी। जब लाला झाऊलाल की पत्नी ने एक दिन अचानक 250 रुपये की मांग उनके सामने जाहिर की तो लाला झाऊलाल का दिल ही घबरा गया और उनका दिल बैठ गया। उनकी यह दशा देखकर उनकी पत्नी ने कहा कि अगर लाला झाऊलाल अपनी पत्नी को पैसे नहीं दे सकते हैं तो वह अपने भाई से मांग लेगी। जब लाला झाऊलाल की पत्नी ने अपने भाई से पैसे मांगने की बात कही तो लाला झाऊलाल क्रोधित हो उठे कि उनके होते हुए उनकी पत्नी अपने भाई से पैसे मांगेगी, यह बात उन्हें मंजूर नहीं थी। उन्होंने अकड़ के साथ कहा कि 250 रुपये के लिए भाई से भीख मांगोगी, वह 250 रुपये का इंतजाम कर देंगे। लेकिन उनकी पत्नी ने कहा कि उसे ये रुपए इसी जिंदगी में चाहिए। इस पर लाला झाऊलाल ने कहा कि वह इसी सप्ताह में उसे रुपए दे देंगे। इस बार उनकी पत्नी ने उन्हें टोकते हुए कहा कि उनका सप्ताह कहने का अभिप्राय 7 दिन से है या 7 वर्ष से। तो लाला झाऊलाल गुस्से के साथ खड़े होते हुए बोले, आज से गिनकर 7वें दिन मुझसे 250 रुपये ले लेना। 7 दिन बाद रुपए लेने के लिए तो लाला झाऊलाल ने बोल दिया, लेकिन जब 4 दिन का समय ऐसे ही बिना रुपयों के प्रबंध के बीत गया तो लाला झाऊलाल को चिंता होने लगी कि उन्होंने अपनी पत्नी को पैसे देने का वादा तो कर दिया, अगर नहीं दे पाए तो क्या होगा। अब प्रश्न उनकी अपनी प्रतिष्ठा का था, इज्जत का था। अपने ही घर में इज्जत दांव पर लगी थी। वे सोचने लगे कि देने का पक्का वादा करके अगर दे न सके तो उनकी पत्नी अपने मन में उनके बारे में न जाने क्या सोचेगी। उनकी पत्नी की नज़रों में उनका मूल्य क्या रह जाएगा। उन्होंने अपनी पत्नी के सामने अपनी तारीफों की सैकड़ों कहानियां सुना रखी थीं। अब उन्हें डर था कि कहीं उनकी कही हुई बातें झूठी न साबित हो जाएं। उनकी पत्नी ने पहली बार अपनी इच्छा जाहिर की थी कि उसे कुछ रुपए चाहिए। इस समय अगर किसी तरह पत्नी को न कहकर बच निकलते हैं तो वे उसके बाद अपनी पत्नी को क्या मुंह दिखाएंगे। एक दिन और बीत गया लेकिन पैसों का इंतजाम नहीं हो पाया। पांचवें दिन परेशान होकर उन्होंने अपनी सारी कहानी अपने मित्र पंडित विलवासी मिश्र को सुनाई। उस समय उनके मित्र के पास भी उतना पैसा नहीं था जितने की वह मांग कर रहे थे, परंतु लाला झाऊ के मित्र ने उन्हें तसल्ली देते हुए कहा कि मित्र होने के नाते उनकी मदद करने के लिए किसी से मांग कर लाने की कोशिश करेंगे, और अगर पैसों का इंतजाम हो गया तो कल शाम तक वे लाला झाऊ लाल को जरूर दे देंगे। वही शाम थी जिसका लाला झाऊ लाल ने अपनी पत्नी से वादा किया था। हफ्ते का अंतिम दिन लाला झाऊ लाल सोच रहे थे कि कल 250 रुपये या तो पत्नी के हाथ में दे देने हैं या अपनी सारी अकड़ से हाथ धोना है। यह सच है कि कल अगर लाला झाऊ लाल ने अपनी पत्नी को रुपए न दिए तो उनकी पत्नी उन्हें कोई फांसी तो नहीं दे देगी, परंतु उनकी असफलता पर केवल हंस देगी। हंसी की कल्पना मात्र से ही लाला झाऊ लाल घबरा गए। वह हंसी कैसी होगी जानते थे, क्योंकि उन्होंने अपनी पत्नी से वादा किया था और अगर वह वादा पूरा नहीं कर पाए तो उनकी सारी हेकड़ी धरी की धरी रह जाएगी। आज शाम को लाला झाऊ लाल के मित्र विलवासी मिश्र का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और सोच भी रहे थे लाला झाऊ लाल नहीं आए तो फिर क्या होगा। तरह तरह के विचार, तरह तरह के सवाल उनके दिमाग में आ रहे थे। इसी फिक्र में पड़े लाला झाऊ लाल छत पर टहल रहे थे। वह बहुत ही चिंता में थे। घबराहट के कारण उन्हें प्यास लगी। उन्होंने नौकर को आवाज दी। नौकर नहीं था तो खुद उनकी पत्नी पानी लेकर ऊपर छत पर चली आई। उनकी पत्नी पानी लेकर तो आई लेकिन जल्दी में गिलास लाना भूल गई। वह लोटा ही लेकर चली आई। लाला झाऊ लाल को वह लोटा बेढंगी सूरत के कारण बिल्कुल भी पसंद नहीं था। जिस लोटे में लाला झाऊ लाल की पत्नी लाई थी वह वैसे तो नया ही था, साल या दो साल पहले ही बना होगा, परंतु उस लोटे की बनावट कुछ इस तरह की थी कि देखने पर लगता था कि उसका बाप डमरू और माँ चिलम रही होगी। लाला ने लोटा ले लिया। अपनी पत्नी का बहुत ही सम्मान करते थे, इस कारण वह कुछ नहीं बोली, जबकि उन्हें वह लोटा एक आंख भी नहीं भाता था। हर पति को अपनी पत्नी का सम्मान करना ही चाहिए, इसको सभ्यता कहते हैं। यह बात भी बिल्कुल सही है, जो पति अपनी पत्नी का ना हुआ वह और किसी का कैसे हो सकता है। अब लाला ने सोचा कि अभी उनकी पत्नी लोटे में पानी लेकर आई है, वही सही है। अगर अभी लाला ने कुछ भी बोला और उनकी पत्नी को बुरा मानने लग गया तो हो सकता है कि उन्हें बाल्टी में भोजन मिले। तब लाला क्या करेंगे? लाला ने अपने गुस्से को अंदर ही अंदर दबा लिया और वह पानी पीने लगे। उस समय वे छत के किनारे के पास खड़े थे। जिन बुजुर्गों ने पानी पीने के संबंध में यह नियम बनाए थे कि खड़े खड़े पानी नहीं पीना चाहिए, सोते समय पानी नहीं पीना चाहिए, दौड़ने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए, उन्होंने पता नहीं कभी यह भी नियम बनाया या नहीं कि छत के किनारे के पास खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए। किसी बड़े बुजुर्ग को शायद ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ कि छत के किनारे के पास खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए। इस महत्वपूर्ण विषय पर किसी ने शायद ध्यान ही न दिया। लाला झाऊलाल मुश्किल से दो एक घूंट ही पानी पी पाए होंगे कि उनका हाथ हिल गया और लोटा उनके हाथ से छूट गया। लोटा उधर इधर टकराने की बजाय सीधा गली की ओर चल पड़ा। वह लोटा उस गति से नीचे गली की ओर गया जिस गति से आसमान में उल्का पिंड नजर आते हैं, और उसकी तेज गति से वह लोटा नजरों के सामने से गायब हो गया। लेखक किसी जमाने में न्यूटन नाम के खुरापाती वैज्ञानिक ने पृथ्वी की आकर्षण शक्ति, जिसे हम ग्रेविटी कहते हैं, नाम की एक चीज की खोज की थी। ऐसा लग रहा था आज वह सारी शक्ति इस समय लोटे के पक्ष में। लाला के होश उड़ गए क्योंकि उनका घर तीसरी मंजिल पर था और इतनी ऊंचाई से लोटे का गिरना कोई हंसी मजाक नहीं था। अगर किसी के सिर पर गिरा हो तो उसका काम तमाम हो जाएगा। लाला अब घबराए हुए थे कि अगर किसी के ऊपर गिरा तो क्या होगा। कुछ हुआ ही ऐसा ही, गली में शोर होने लगा। लाला को लगा कि आखिर लोटा किसी न किसी के सिर पर जरूर गिरा है जो इतनी जोर से आवाज आई है। वह नीचे दौड़े चले आए और उन्होंने देखा कि उनके आंगन में लोगों की भीड़ लगी हुई है और उस भीड़ का एक मुख्य पात्र एक अंग्रेज है जो सिर से पांव तक भीगा हुआ है और जो अपने एक पैर को हाथ से सहलाता हुआ दूसरे पैर पर नाच रहा है। उसके पैर पर शायद कुछ चोट लगी है इसलिए वह ऐसा कर रहा है। उसी के पास अपराधी लोटे को देखकर लाला झाऊलाल को सारी घटना समझ में आ गई। आखिर में हुआ क्या है? गिरने से पूर्व लोटा एक दुकान के बाहरी हिस्से से टकराया और उससे टकरा कर वह अंग्रेज के पांव पर जा गिरा, जिससे अंग्रेज घायल हो गया। लोटे ने दुकान पर खड़े अंग्रेज को पूरी तरह सिर से लेकर पांव तक धो दिया और फिर उसी के जूते पर आ गिरा। उस अंग्रेज को जब मालूम हुआ कि लाला झाऊलाल ही उस लोटे के मालिक हैं, तब उसने केवल एक काम किया कि वह चिल्लाने लगा, मालिक को दोषी ठहराने लगा। लाला झाऊलाल को आज ही मालूम हुआ कि अंग्रेजी में भी गालियों का ऐसा विशाल खजाना है। जिस समय अंग्रेज लाला को बुरा भला कह रहा था, उसी समय पंडित बिलवासी मिश्र भीड़ को चीरते हुए आंगन में आते दिखाई पड़े। उन्होंने देखा कि सब लोग उनके मित्र को दोषी ठहरा रहे हैं। और उन्होंने सबसे पहले ये समझदारी की कि पूरी भीड़ को बाहर कर दिया। उसके आगे कल बेटा धन्यवाद।